हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 57। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के चेतना के क्या लक्षण होते हैं, कैसे वो बोलता है, इसके बारे में 56वें श्लोक में चर्चा हुई थी। अब वो कैसे शांत रहते हैं, नहीं बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी 57 श्लोक में। श्लोक को देखिएगा। यह सर्वत्रानभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। इस संबंध में एक बहुत सुंदर श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है। द्वैत द्वैत वद्वैत भद्र भद्र अभद्र भद्र अभद्र द्वैत, ये ज्ञान होता है और सब मन का भ्रम, सबेर मन भ्रम, यानी जगत में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, ये सब जो है द्वैतता के कारण होता है और ये हमारा मन की कल्पना होती है। पूर्वगत संस्कारों के अनुसार मन कुछ चीज़ों को अच्छा मानता है, कुछ चीज़ों को बुरा मानता है, कुछ को शुभ मानता है, कुछ को अशुभ मानता है। और ये बात भगवान ने 55वें श्लोक में बोली थी, सर्वान् पार्थ मनोगतान प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। ये जो मानसिक मनोधर्म, मानसिक कल्पना से शुभ अशुभ का विचार मन में चलता रहता है, उसको एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति त्याग देता है। आत्मा पूरी तरह से चेतन है और इस जगत का कोई भी शरीर, चाहे वो देवता का भी शरीर क्यों ना हो, वो सूक्ष्म भी हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, वो प्राकृत है। तो इस कारण से आत्मा के लिए इस जगत में सब कुछ अशुभ ही है। अशुभ का अर्थ है इनकम्पैटिबल, कहना चाहिए कि दुखमय। श्रील प्रभुपाद जी इसको विनोद में बताते हैं कि अगर आपके सामने विष्ठा यानी टट्टी पड़ी है, एक टट्टी सूखी पड़ी है, एक जो विष्ठा है वो गीली है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि विष्ठा अगर सूख गई है तो वो अच्छी हो जाती है। आप लोगों को सुनने में बहुत गर्हित या घृणाकारी वाली बात लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली बात यही है। इस जगत का जो भी सुख दुख भौतिक रूप से हमारे जीवन में आता है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, खाली हमारे मन की प्रतिकूल और अनुकूल वृत्तियां होती हैं, इसको हम सुख और दुख के रूप में अनुभव करते हैं। तो इसलिए जो पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो इस प्रकार से इन दोनों को एक ही समान मानता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। ये इंटरेस्टिंग चीज है, उथल पुथल, एजिटेशन। एजिटेशन अच्छे कैसे हो सकते हैं? अच्छा ऐसे हो सकते हैं, और कभी कभी अच्छे एजिटेशन जो होते हैं, सुख होता है, वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? जैसे कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा है और युद्ध में उसको थोड़े समय के लिए जीत प्राप्त होने लग जाए, तो काफ़ी संभावना है कि वो अब ध्यान देना बंद कर दे, और फिर जो विपक्ष का व्यक्ति है वो उस पर आसानी से अटैक कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग सब लोग जानते होंगे, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए संकल्प उठाया था, तो एकदम अंतिम में जाकर सारे महारथी जयद्रथ को बचाने में लग गए, और अर्जुन अपनी केवल अपनी रक्षा कर पा रहे थे, जयद्रथ को मारने का तो प्रश्न नहीं हो रहा था। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को छुपा दिया कुछ समय के लिए, सूर्य अस्त नहीं हुआ था तब, तो जयद्रथ बाहर आ गया। तो इस थोड़ी सी खुशी के कारण उसने अपनी जो सुरक्षा थी उसके घेरे के वो बाहर आ गया, और फिर अर्जुन भगवान सुदर्शन चक्र को हटा देते हैं और अर्जुन उनका मस्तक काट देते हैं जयद्रथ का। तो आप देख सकते हैं, उसी प्रकार से हमारा, हम भक्ति करते हैं, स्पेशली जो लोग साधक हैं भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए मान लीजिए हमारे हृदय से काम वासना या और वासनाएं कम हो जाती होती प्रतीत होती हैं, तो हम सोचेंगे हम तो अब शुद्ध भक्त हो गए, हमें अब अपने इंद्रियों को सेवित करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बाघ है और बाघ सो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खतरनाक नहीं है, अगर उसको जगाया गया तो हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसी के और एप्लीकेशन क्या है, इंद्रियों को हम संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए जब तक हम प्रेमावस्था को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक हमारी इंद्रियों में एक राडार जैसी प्रवृत्ति होती है। राडार आप जानते हो अगर, तो एक ऐसी मशीन होती है जो दूर की वस्तुओं को स्कैन करती रहती है, पूरे आकाश को स्कैन करती रहती है कुछ पर्टिकुलर वस्तुओं को पकड़ने के लिए। कोई जहाज आ गया या कोई और खतरनाक वस्तु आ जाती है तो राडार में पकड़ी जाती है। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं, कंप्यूटर में आजकल वाईफाई होता है, अपने फोन में वाईफाई होता है, तो अगर आप फोन का वाईफाई शुरू करते हैं तो वो स्कैन करता है कि आसपास कोई क्या कोई वाईफाई कनेक्शन है जिससे मैं कनेक्ट हो जाऊं। तो ये फोन वाला उदाहरण तो आप आसानी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी इंद्रिय और हमारे मन लगातार इंद्रिय भोग के विषयों के लिए स्कैन करते रहते हैं। ये बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये खाली मनोरंजन की बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर बात है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जीभ, सब कुछ जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो लगातार स्कैन करती रहती हैं कहाँ मुझे नेक्स्ट भोग प्राप्त होगा। अपने विषयों के प्रति वो स्वतः आकृष्ट हैं। तो अगर हम अपने इंद्रियों को भोगों में जाकर तरफ जाने देंगे या अपने को ऐसे वातावरण में रखेंगे जहाँ पे विषय आसानी से मिल रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि हम इंद्रिय भोग के विचारों से बच सकें। और अंततोगत्वा हम उस पर ध्यान करेंगे और फिर हमारी विस्मृति हो जाएगी। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 59 में, बट ये इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना चाहिए। तो व्यक्ति को समझ में आना चाहिए जितने भी इंद्रिय के विषय हैं वो कोई भी अच्छा नहीं है, सभी बुरे हैं, लेकिन मेरी इंद्रियों की प्रवृत्ति है, भौतिक इंद्रियों की प्रवृत्ति है उनको पकड़ने की, स्कैन करते रहने के लिए, आकर्षित होने के लिए। तो इसलिए व्यक्ति को बचना चाहिए, यानी कि अगर थोड़ी बहुत सुख मिल रहा है या भक्ति में थोड़ी प्रगति कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब माया शांत हो गई है, ये माया कोई और अटैक नहीं करेगी, वो हर क्षण तैयार है। पर उसके लिए आसान क्या है, हमारे इंद्रियों के द्वारा हम पर अटैक करना। जैसे कभी कोई बॉक्सिंग मैच होता है तो उस बॉक्सिंग मैच में व्यक्ति हर जगह मारते हैं, प्रयास करते हैं मारने का, लेकिन देखते हैं कि किस जगह उस बॉक्सर को पहले से चोट लगी है और कहाँ सबसे अधिक दर्द हो रहा है, वो ये लगातार देखते रहते हैं। और फिर उसके बाद एक बार मालूम चलने के बाद बार बार उसी स्थान पर मारते हैं और वह व्यक्ति धराशायी हो जाता है। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए कोई एक पर्टिकुलर इंद्रिय विषय बहुत आकर्षक हो सकता है और माया को अच्छी तरह से जानती है उसे क्या वो अच्छा लगता है और फिर वो बार बार उस विषय को उसके सामने प्रस्तुत करेंगी। और अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बड़े से बड़े व्यक्ति भी माया से पराजित हो जाते हैं। तो दुख आने से तो व्यक्ति कम से कम सतर्क रहता है, भगवान की भक्ति ठीक से करता है, लेकिन सुख आने पे प्राय संभावना होगी कि हम भगवान को भूल जाएं। तो इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, इस उथल पुथल से बचने का प्रयास करना चाहिए। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्थर हो जाएं। पिछली बार श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर समझाया था कि जब कुछ अच्छा मिलता है, अच्छी सिचुएशन में भक्त रहते हैं तो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि भगवान की कृपा से उनको भगवान की सेवा करने के लिए इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। जैसे मान लीजिए शरीर ही अगर बहुत अच्छा है तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने हमको एक स्वस्थ शरीर दिया जिससे मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। और अगर जीवन में कष्ट आता है तो भी भगवान का व्यक्ति को धन्यवाद करते हैं कि मेरे को बहुत भोगना था लेकिन भगवान ने बहुत कम दिया। तो यानी कि वो दुख और सुख का अनुभव करते हैं लेकिन दोनों में ही भगवत कृपा का अनुभव करते हुए भगवान को धन्यवाद देते हैं और अपनी चेतना को भगवान की सेवा में आविष्ट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की तरह सुख और दुख का अनुभव नहीं करते, लेकिन स्थिर होने का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में अपनी सेवा को से वो डिगते नहीं हैं, उससे अलग नहीं होते। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि ये संसार द्वैत या द्वंद्वों से पूर्ण है। यानी कि आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के द्वैत नहीं है, वहाँ सभी कुछ स्पिरिचुअल है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इस जगत में हमें द्वैतों का सामना करना पड़ेगा, गर्मी सर्दी मान अपमान का करना ही पड़ेगा। तो उसमें उन दोनों परिस्थितियों में अपनी सेवा के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति हम सजग रहें और स्थिर रहें, ये हमारी स्थित प्रज्ञता का लक्षण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्ति खाली एक जगह बैठा रहे, वो भी है अर्थ, लेकिन समाधि का अर्थ है अपने मन को कृष्ण की सेवा में फिक्स रखना कि किसी भी परिस्थिति में मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, और इसके लिए बीच में हमको दुख आ रहा है सुख आ रहे हैं वो तो अवश्य भावी है। हरे कृष्णा। अब हम लोग आगे बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री के ऊपर को थोड़ा देखेंगे और फिर बोलते हैं, यह श्लोक को बोल रहे, यह सर्वत्रान अभिस्नेहस, यानी कि एक सत्यप्रज्ञ व्यक्ति का किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति कोई बहुत अधिक स्नेह नहीं होता है, लेकिन सभी जीवात्माओं के प्रति अपनी करुणा के भावना के कारण उनका स्नेह होता है। उस सभी को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और उनकी उनको कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि एक पर्टिकुलर जीवात्मा के प्रति स्नेह नहीं होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो कोई जीवात्मा अगर उस स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का या भक्त शुद्ध भक्त का इंद्रिय तृप्ति करती है, इसमें कुछ सहयोग करती है, तो उसकी वजह से उस जीवात्मा के प्रति कोई अधिक स्नेह नहीं होता है। सभी जीवात्माओं के प्रति उनका करुणावश स्नेह होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस जगत में हमारा स्नेह तब होता है जब कोई व्यक्ति हमको इंद्रिय भोग में सुख दे, सहायता करे, लेकिन इस प्रकार की भावना स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को पहले ही त्याग चुके हैं, क्योंकि ये सारी बातें मन से उद्भूत होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति उनको अच्छा खाने को देते हैं, माला देते हैं, चंदन देते हैं, तो वो ऐसे बहुत सुख से अभिभूत नहीं होते, हर्षित नहीं होते और उस व्यक्ति की गुणगान नहीं करने लगते हैं, तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो, तुम सदा जीवित रहो। और अगर कोई व्यक्ति उनको अच्छा वस्तु नहीं देता है, स्वादनीय अस्वादनीय वस्तु नहीं देता है, या उनको डंडे से मारने का प्रयास करता है या उनके प्रति असम्मान करता है, तो वो ये नहीं कहते तुम तो बहुत पापी व्यक्ति हो, तुम्हें तुरंत मर जाना चाहिए। तो ये उनकी स्थिति प्रज्ञता का लक्षण है। यहाँ पे स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से नहीं बोलता है या उसका मन किस प्रकार से शांत है बुरी वस्तुओं के प्रति, शुभ अशुभ वस्तुओं के प्रति, इस श्लोक में यही बात की चर्चा की गई है। तो ये भाई हम श्रील बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री समझते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।